करें शुरू जी। कौन सा स्लोग चलेगा ना
इधर ऊपर ला 48वीं दा रह गया जी तेने लेना 48 पूर्व श्लोक में।
अच्छा पूर्व श्लोक श्लोक में अखंड सच चित आनंद महावाक्य में लक्षणा द्वारा बोध कहया है। की कह रहा है ग्रंथ का शंकावादी कह रहा है पूर्व जेड़ा श्लोक है ओदे विच क्या क्या अखंड सच चित आनंद महावाक्य जेड़ा है ओदे विच इहदा बोध दस्या है लक्षणा द्वारा। सत चित आनंद दा तब बोध होगा जे तुसी महावाक्य नूं लक्षणा लगाओगे तो लक्षणा वृत्ति दे नाल ਇਹ ਸੱਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਤਤ ਪਦ ਔਰ ਤਮ ਪਦ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਲਕਸ਼ਣਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਧ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਲਕਸ਼ ਸਵਿਕਲਪ ਰੂਪ ਹੈ ਅਥਵਾ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋ ਪਕਸ਼ੋਂ ਕੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪਕਸ਼ ਮੇ श्लोक के उत्तर अर्ध से दोष कहते हैं। उन्हें हुण की कर दिता उन्हें जरा तुसी कह रहे हो निर्विकल्प है या सविकल्प है। ठीक है चलो सुनो आगे पता चल जाएगा। स्विकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्याद वस्तुना वस्तुता निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न द्रष्टुम ना सा संभवी। की कह रहे है ग्रंथ कह रहे है संकल्प संकल्प अस्या है ना अस्या इन एक केड़ी विभक्ति लगी षष्ठी विभक्ति का एक वचन स्या जो तो लगे तो वो हो गया षष्ठी विभक्ति का एक। चलो ये तो व्याकरण ही छोड़ो तुम की जाना संकल्प संकल्पस्या लक्ष्यत्व आ कह रहा है नाम जाति आदि विकल्प सहित। विकल्प किनू कहते हैं एक बार सनकादि चारों भरा भागवत दे जारवें स्कंद दी एक गल है एक कथा है जिहड़ी मैं तुहानूं थोड़ी जी हिंट देने लगा भागवत दे जारवें स्कंद उहदे विच सनकादि ब्रह्मा जी दे पुत्र सी मानसिक नारद और सप्तऋषि और ये चारों सनत कुमार इन्होंने एक बार ब्रह्मा जी नु प्रश्न किया हे पिता श्री ये जेड़ा मन है ना उन्होंने चित कहा ये जेड़ा मन है ये संसार दे विच घूमदा रहिंदा और ये जेड़ा संसार ये मन दे विच घूमदा रहिंदा। प्रश्न समझ लेना ये जेड़ा मन है किथे घूमदा रहिंदा संसार दे विच ते जेड़ा संसार वो मन दे विच घूमदा रहिंदा ये ते आपस विच क्यों खिचड़ी वांगू बने पए आ संसार दे विच ना जान दो ते मुक्ति जेड़ा मुक्ति चाहुंदा ओ फिर की करे ए प्रश्न उन्होंने ब्रह्मा जी नू अपने पिता श्री नू कीता सनकादियां ने उन्होंने उस समय सृष्टि की रचना विच लगे सी तो उन्हें सोचा हुण मैं सब कुछ छड्ड के इन्हां नूं उत्तर दऊंगा। उन्होंने एकाग्र चित होके भगवान विष्णु का ध्यान किया तो भगवान विष्णु हंस रूप दे विच प्रगट होए उन्होंने सामने। 24 अवतारां दे विचों एक हंस अवतार भी आता है जो तो भागवत 24 अवतारां की कथा सुनोगे तो उहदे विच एक हंस अवतार की भी कथा आती है। ये तुहानूं मैं कथा दस्सण लगा ज्यादा विस्तार नहीं जाना अपना मुख लक्ष्य तो यह है ये हुण प्रसंग बस आ गया प्रसंग तुहानूं सुणा दे तां ही खुलेगा ना ये। फिर ब्रह्मा जी सृष्टि दे विच लगे सी उन्हां दा मन सृष्टि दे विच लगा सी ते उन्होंने विचार कीती पर उन्होंने सोचा चलो भगवान विष्णु का चिंतन किया भगवान विष्णु हंस रूप च प्रगट हो गए। उन्होंने सनकादियां ने सोचा ये कि आ गया ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਆਤਮ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਸੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਾਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ? ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਹੂੰ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਣ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਰਵ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਨਿਰਰਥਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਰਕ ਸਵਰਗ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਾ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ? ਅਸੰਗ ਹੈ, ਅਸੰਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ? ਆਕਾਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਲਓ, ਰੜਕਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ? ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੱਜੇਗੀ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਇਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਿਕਲਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਸੁਣੋ, ਸਵਿਕਲਪਸਿਆ ਨਾਮ ਜਾਤੀ ਆਦਿ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਲੈਣਾ, ਨਾਮ ਜਾਤੀ ਦੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਵਿਕਲਪ ਸਹਿਤ ਵਸਤੂ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ, ਵਸਤੂ ਬਣੇ, ਵਸਤੂ ਬਣੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਰਕਟ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਟ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ, ਕੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਸ਼ਟ, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਸਤੂ ਮੈਨੇ ਬ੍ਰਹਮ। ਨਾਮ ਜਾਤੀ ਆਦਿ ਵਿਕਲਪ ਸਹਿਤ ਵਸਤੂ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ, ਮਤਲਬ ਲਕਸ਼ਤਵੇ, ਜਦੀ ਲਕਸ਼ ਮਾਨੋਗੇ, ਜਦੀ ਨਾਮ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ ਮਾਨੋਗੇ, ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੀ ਨਾਮ ਜਾਤੀ ਗੁਣ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਕਿਰਿਆ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮੰਨੋਗੇ, ਤੋ ਮਹਾਂਵਾਕੇ ਕਾ ਅਰਥ ਮਾਨੋਗੇ, ਇਹ ਮਹਾਂਵਾਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਐਸਾ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲਕਸ਼ਸਿਆ ਅਵਸਤੂ ਤਾ ਤਸਿਆ, ਵਹਿ ਲਕਸ਼ ਵਸਤੂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ। ਕਿਉਂ? ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾਮ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਗੁਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਵਾਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਵਿਕਲਪਸਯ ਲਕਸ਼ਤਵਮ, ਨਾਮ ਜਾਤੀ ਆਦਿ ਵਿਕਲਪ ਸੇ ਰਹਿਤ ਪਦਾਰਥ ਕੋ ਲਕਸ਼ ਵਾਕਯ ਅਰਥ, ਲਕਸ਼ ਮਾਨੇ ਵਾਕਯ ਅਰਥ ਸੇ ਮਾਨੋਗੇ, ਬਨਤਾ ਹੁਆ ਨਾ ਦ੍ਰਸ਼ਟੁਮ ਨਾ ਚਾ ਸੰਭਵਤੀ ਸੰਭਵੀ, ਕਹੀਂ ਪਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਸੰਭਵਤਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਮਾਨੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਮਾਨੋਗੇ ਤਾਂ ਐਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੈਸੇ ਹੈ, ਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਸੀ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਬ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮੇ ਸਿਧਾਂਤੀ ਪੂਰਵ ਪਕਸ਼ੀ ਕੇ ਕਥਨ, ਇਹ ਪੂਰਵ ਪਕਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਬ ਸਿਧਾਂਤੀ ਉੱਤਰ ਦੇਗਾ। ਸਿਧਾਂਤੀ ਪੂਰਵ ਪਕਸ਼ੀ ਕੇ ਕਥਨ ਕੇ ਜਾਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਰੂਪ ਦੋਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਅਸਦ ਉੱਤਰ ਹੋਣੇ ਸੇ ਪੂਰਵਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ प्रकार उत्तर देने के लिए विकल्प पूर्वक अर्थात दो पक्षों का कथन पूर्वक पूर्व पक्षी के प्रश्न में दोष कहेंगे उन फिर उन दोष दसेंगे। आप तो जेड़ा प्रश्न
किया प्रश्न है जी दोष
नहीं इत दोष ने जैसे सनकादियां ने प्रश्न किया था ना भगवान नु तुसी कौन जे उन्हें दोष दस दिता केड़ा मैं जे तो जाति ला के दसा मैं फलानी जाति वाला हूँ तो आत्मा की जाति कोई नहीं जे मैं दसू मैं ए गुण वाला हूँ आत्मा च तो गुण कोई नहीं जे मैं दसू मैं ये क्रिया वाला हूँ तो फिर आत्मा च क्रिया ही कोई नहीं तो फिर मैं केड़ा उत्तर देवा इस वास्ते जरा तुसी प्रश्न किया की हो गया निरर्थक। अब ये जरा ग्रंथकार है ये पूर्व पक्षी ने ऐसा प्रश्न कर लिया तो हुण उत्तर ओदा देंगे विकल्पो निर्विकल्पस्या सविकल्पस्या वा भवेत आद्य आद्य मैंने पहला आद्य व्यवहिति विवहति अंतरत्वा अनवस्था आत्म आश्रय इस कई दोष आ गए एक केड़ा आ गया अनवस्था आ गया एक आत्माश्रय आ गया एक व्याघात दोष। व्याघात दोष की हुंदा है जैसे किसी ने मौन रखा हो उनके तू मौन रखा हाँ हाँ मैं मौन रखा है वो कहता मौन होया वो तो बोल के दस रहा मैं मौन रखा किसी नूं पुछो भी तू मौन रखा हो गया हाँ भी मैंने मौन रखा है तो मौन कहता होया फिर तो केड़ा हो गया व्याघात दोष। तो जे तेनू पुछे तेनू ज्ञान किदां होया अपने आप तो केड़ा दोष आ गया आत्माश्रय अपने आप आत्माश्रय। तो जे कहे तेनू ज्ञान किदां होया मैनू इन्हें कराया इनू किन्ने कराया इनू मैं कराया ना अन्योन्य आश्रय एक दूजे दे आश्रय। तो जे कहिए चक्कर का दोष ही हुंदा तेनू ज्ञान किन्ने कराया मैनू पहले ने पुछिए उन्हें कहना मैनू दूजे ने दूसरे ने पुछा उन्हें कहना मैनू तीसरे ने कराया तीसरे ने पुछा उन्हें कहा मैं चौथे चौथे ने पुछा उन्हें कहा मैनू पहले ने ये चक्कर का दोष। अनवस्था उन्हें कहते हैं पहले नु पुछा कहता मैनू दूसरे ने कराया दूसरे नु तीसरे ने तीसरे चल दे रो इदा कितने जाके टिकोगे उन्हें कहते अनवस्था दोष ये दोष होंगे ठीक है इन्हों की गल कर रहे हो। निर्विकल्पस्या सविकल्प वा आप की कह रहे हैं वा बने जा वा बने हों जा विकल्प रहित अथवा विकल्प सहित विकल्प रहित अथवा जा जा इतने पंजाबी लगा लो विकल्प रहित जा विकल्प सहित पदार्थ के विषय में विकल्प भवेत आपका किया हुआ विकल्प जो पूर्व श्लोक में कहा हुआ है केड़ा क्या पहला जरा क्या है ठीक है क्या है क्या है आद्य व्यवहिति प्रश्न निर्विकल्प पक्ष में व्याघात दोष प्राप्त होता है जरा निर्विकल्प पक्ष है ना उसड़ा दोष आएगा व्याघात दोष अर्थात निर्विकल्प में विकल्प नहीं हो सकता जरा निर्विकल्प है उस विकल्प कहो तो किड़ा व्याघात व्याघात दोष आया जो मोनी नु मोन बोल के दस रहा हो तो निर्विकल्प में विकल्प हो तो किड़ा दोष आ गया व्याघात। अन्यत्र अनवस्था आत्माश्रय जे दूसरे सविकल्प कहोगे तो फिर दो दोष केड़े आ गए अनवस्था आत्माश्रय और सविकल्प पक्ष में अनवस्था आत्माश्रय आदि का अनेक दोष प्राप्त होंगे इसलिए पूर्व श्लोक में आपने जो दो पक्ष रूप विकल्प किया है वह ठीक नहीं है ना जेड़ा तुसी पहला कीता ना विकल्प इस सविकल्प है या निर्विकल्प है अंदा वो ताडा ठीक ही नहीं है निर्विकल्प मनोगे तो केड़ा दोष आ जाएगा व्याघात सविकल्प मनोगे तो सारे दोष आ जाएंगे ठीक है। अब थोड़ा जा टीका सुन लो जा टिप्पणीकार की कह रहे हैं यही है ना टिप्पणी क्या यह है विकल्प निर्विकल्प का है अंदा जेड़ा विकल्प तुसी कर रहे हो ये केड़ा है निर्विकल्प का आप ही की कहोगे ये जेड़ा गुण है केड़ा है निर्गुण का है नाले निर्गुण भी कह रहे नाले उन गुणी भी कह रहे हो ये की कह रहे हैं ये कह रहे ये जेड़ा विकल्प है किसका है निर्विकल्प का है जेड़ा तुसी विकल्प दस रहे केड़ा है निर्विकल्प का ठीक है ये गुण केड़ा है निर्गुणी का तो निर्गुण का है होया फिर निर्गुण तो रह ही ना जे उस गुण आ गया तो है ना, तो जे निर्विकल्प कह रहे हो तो फिर कह रहे हो ये जरा है ना विकल्प ये कि निर्विकल्प का, तो निर्विकल्प कहाँ रहा फिर, अथवा सविकल्प का आद्य पक्ष में व्याघात दोष होता है और द्वितीय पक्ष में आत्माश्रय अनवस्था आदि आदि दोष होते हैं, दूसरे पक्ष में सविकल्प पक्ष में कई दोष आ जाएंगे। द्वितीय पक्ष के उत्तर का अभिप्राय ये है, अभिप्राय मैंने हाँ सविकल्पस्या विकल्प देख लो, उन थोड़ा व्याकरण चलेगा, संकल्पस्या विकल्प इसमें विकल्पत्वेन सह वर्तते इति सविकल्प, इस विग्रह से इस विग्रह के अनुसार विकल्प से युक्त का विकल्प, विकल्प से युक्त का विकल्प वो पहला विकल्प ऐसा अर्थ करना होगा, तब तो विकल्प से युक्त का विकल्प, इस कथन में दो विकल्प पद आते हैं, देखो इथो ले लो केड़ा विकल्प से युक्त का विकल्प, दो विकल्प आगे ना एक पहला एक आखिरी, ठीक है अब व्याकरण रीति से लगाएंगे अर्थ, इस कथन में दो विकल्प पद आए हैं, इसमें प्रथम विकल्प तृतीयांत है, तृतीयांत मैंने तृतीय विभक्ति है, और दूसरा प्रथमांत है, प्रथमांत मैंने प्रथमा विभक्ति, व्याकरण आ गई ना, पहला तो हो गया तृतीयांत, दूसरा हो गया प्रथमांत, इसमें प्रश्न उठता है कि तृतीयांत विकल्प और प्रथमांत विकल्प ये दोनों एक ही हैं क्या, अंदर जो विभक्तियां दो दो देतियां तो क्या विकल्प एक ही है क्या अलग अलग है अथवा भिन्न भिन्न है, इसमें प्रथम पक्ष तो आत्माश्रय दोष होगा, एक ही कहोगे तो आत्माश्रय दोष हो जाएगा, ठीक है क्योंकि दोनों में अभेद होता हुआ भी आप तृतीयांत विकल्प के ऊपर प्रथमांत विकल्प रखना चाहता है, जदों विकल्प से रहित है उन विकल्प कहोगे विकल्प वाला कहोगे तो आत्माश्रय दोष हो जाएगा, कारण की तृतीयांत विकल्प विशिष्ट सविकल्प ब्रह्म में प्रथमांत विकल्प रखने पर ब्रह्म के विशेषणी भूत तृतीयांत विकल्प में भी प्रथमांत विकल्प का रहना अवश्यम भावी है, ये सारी व्याकरण है इसलिए व्याकरण पढ़ी होती तो हम तुम एक एक अक्षर का पता लग जाना, तृतीयांत किनू कहते हैं प्रथमांत किनू कहते हैं, तृतीयांत मैने तृतीया विभक्ति, प्रथमांत में प्रथमा विभक्ति, सत विभक्तियां होंदिया है व्याकरण के हिसाब न, सत विभक्तियां होंदिया, कर्ता कर्म करण संप्रदाय संबंध और अधिकरण और में संबंध काके की अधिकरण में पर ऐसे लगेगा अर्थ, ये जो तृतीयांत वो प्रथमांत विभक्तियां है, ठीक है चलो, क्योंकि विशिष्ट वृत्तिक धर्म विशेषण में भी रहता है यह निजम है, यदि द्वितीय पक्ष को लेकर दोनों में भेद मानोगे तो भी ब्रह्म के विशेषणी भूत तृतीयांत विकल्प में विकल्प के आश्रय ब्रह्म को पुनः सविकल्प मानना होगा, क्योंकि निर्विकल्प ब्रह्म किसी भी विशेषण का आश्रय नहीं होता, जो निर्विकल्प निर्विकल्प ब्रह्म है वो फिर केड़े विशेषण का आसरा होगा, जब विशेषण लाओगे तो फिर की हो गया, हो विशिष्ट हो गया, विशेषण वाला हो गया,
निर्गुण हो गया,
हाँ तब तो जिस तीसरे विकल्प से युक्त ब्रह्म में तृतीयांत विकल्प है वह तीसरा विकल्प क्या प्रथमांत विकल्प ही है, पहला तृतीयांत लगाता फिर प्रथमांत लगाता, जिंदा जरा तृतीयांत कह रहे हो तृतीयांत मैंने जो तीसरे तीसरी विभक्ति वाला है वही विभक्त वही जरा विकल्प है वो प्रथमा विभक्ति वाला वही है कि अलग अलग है, अथवा प्रथमांत और तृतीयांत दोनों विकल्पों में से भिन्न है, इसमें प्रथम पक्ष तो अन्योन्य आश्रय होगा, कि प्रथम पक्ष मानोगे तो केड़ा दोष आ जाएगा अन्योन्य आश्रय, क्योंकि तीसरे विकल्प से अभिन्न प्रथमांत विकल्प की ब्रह्म में स्थिति के लिए तृतीयांत विकल्प भी की अपेक्षा है, तथा तृतीयांत विकल्प की ब्रह्म में स्थिति के लिए तीसरे विकल्प से अभिन्न प्रथमांत विकल्प की अपेक्षा है। द्वितीय पक्ष में तो तृतीय विकल्प आश्रय भूत ब्रह्म पुनः सविकल्प आगे क्या है जी
चुनने के
हैं
चुनने लगे चुनने
चुनने के कारण
चुनने है ना चुनने के कारण वह चौथा विकल्प क्या प्रथमांत विकल्प ही है। थोड़ा जा गुंजलदार है गुंजलदार नहीं है व्याकरण पड़ी होंगी तो अपने आप आ जाना खास नहीं है कुछ भी नहीं इसे बिच सिर्फ सानू विभक्तियां नहीं नहीं पता ना विभक्तियां का पता हो गए तो फिर आप फट अर्थ लग जू हाँ ये कह रहा चलो आगे आ जाएगा थोड़ा ही है इन जल्दी जल्दी निकाल देने अथवा प्रथमांत तृतीयांत और तीसरा विकल्प से भिन्न है इसमें आद्य पक्ष तो चक्र नाम दोष होगा क्योंकि चौथा विकल्प से अभिन्न प्रथमांत विकल्प की ब्रह्म में स्थिति के लिए तृतीयांत विकल्प की अपेक्षा है और तृतीयांत विकल्प की स्थिति में के लिए तीसरा विकल्प की अपेक्षा है तीसरा विकल्प की ब्रह्म में स्थिति के लिए चौथे विकल्प से भिन्न प्रथमांत विकल्प की अपेक्षा है। अतः इस प्रकार घूमते रहने के कारण चक्र का दोष है ऐसे घूमते रहोगे तो क्या दोष हो गया चक्र का। और द्वितीय पक्ष में भी उस चौथे विकल्प के लिए पंचम विकल्प और उसके लिए षठ विकल्प इस प्रकार अनवस्था दोष आ जाता है। ये फिर किड़े दोष हो गए आत्माश्रय व्याघात दोष आत्माश्रय अन्योन्याश्रय और अनवस्थ चक्रिका और अनवस्था सारभाव तुम पहला दसिया है आत्मा का ना कोई गुण है ना कोई जाति है ना ओ विकल्प है ना संकल्प है। आत्मा का ज्ञान ता होगा ये संकल्प विकल्प मनदा है ते जदो संकल्प विकल्प बंद होंगे ता आत्मा में जाओगे कि संकल्प विकल्प है ते आत्मा का ज्ञान हो जाएगा ऐसे होना हो तो सारे नु हो जाए
जे संकल्प विकल्प जुड़ के रहे ता आत्मा दी ज्ञान नहीं हो सकता
सिद्धी गल हां मतलब कहन दा तात्पर्य है आत्मा दा कोई जाति नहीं है कोई गुण नहीं है कोई संबंध नहीं है कोई क्रिया नहीं है सारे दोष आ जाएंगे तो तुसी इना इसे वास्ते दे गीता विच भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय दे आखिर विच जाके की किया है सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अंदर सारे धर्म नु छड़ दे धर्म ने सारिया मर्यादा छड़ दे ते फिर की होया सर्व धर्मन परित्यज्य माम एकम शरण ब्रज तू मेरी शरण आ जा बस
बस बस, बस।
तू सारे धर्मन केड़े केड़े धर्म का पालन करेगा क्षत्रिय धर्म का पालन करेगा या गृहस्थ धर्म का पालन करेगा केड़े धर्म का पालन करेगा इस वास्ते तू इन धर्मां च मत उलझ तू की कर तू मम मेरी शरण आ जा अहम त्वाम सर पापे वो मोक्षामी मां सुचा मैं तेन सारे जेडे पाप है उन्होंने मुक्त कर दूंगा मां सुचा शोक ना तू कर तू शोक ना कर मैं तेन सारे पापा तो मुक्त कर दूंगा पर की कर
मेरी
शरण आ जा
मुक्त
करना की आप धर्म च उलझ रहे ये काम ठीक नहीं है ऐ होना
चाहिए
ये काम ठीक नहीं है ऐ होना चाहिए ऐ क्यों हो गया है ना तो बस फिर की हो गया फिर आप सुधार दे रहा दुनिया ने सुधार दे रहा आप दुनिया ने सुधार दे आप बिगड़ जाएंगे।
एक विद्वान ने इस तरीके कहा जी बहुत बड़ी कोठी है नेरा उठे तुम अंदर बढ़ोगे डरोगे भी कितने कुछ चोर ना हो कोई कोई सप ना हो
हाँ हों
सारे थोड़ा दुख हो गए औकड़ा सारिया हो गई किनू किनू हटाओगे वो कहता एक दीवा बाल दो बस चानण हो गया सारे डर खत्म
बई आत्मा दे विच प्रवेश करना क्यों नहीं कोई चाहता आत्म ज्ञान क्यों नहीं चाहता कोई मुख कारण दा की आत्म ज्ञान चाहते तो सारे हैं पर कोशिश क्यों नहीं करते चाहते तो मतलब सुख आत्मा दा ज्ञान दा अर्थ की है सुख तो सुख केड़ा नहीं चाहता तो पशु पक्षी भी बेचारे चाहते हैं तो फिर ये प्रवेश क्यों नहीं कर रहे आत्म ज्ञान फिर आत्म ज्ञान सानू हो जाए ये वास्ते प्रयत्न कोशिश क्यों नहीं करते क्योंकि ये जड़े दूसरे छोटे मोटे सुख है ना उन्होंने उलझे फिर रहे हैं
ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਫਿਰਨ ਡੇ ਛਣਕਣਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਉਲਝ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਫੜਾ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਫੜਾਤਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੀ ਫੜਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਗੋਦੀ ਚ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਣਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜੇ ਚੱਲ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਛਣਕਣਾ ਦੇ ਦੂਗਾ ਪੂਰਵ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪੂਰਵ ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਂ ਉਕਤ ਦੂਸ਼ਣ ਸਮੂਹ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਸਥਲ ਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਸਰਵਤਰ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਪੂਰਵਕ ਜਹ ਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਤ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਸਕੋ ਇਸੀ ਸ਼ਲੋਕ ਮੇ ਤੇਨਾ ਆਦਿਕ ਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਤੇਨਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਵਮ ਤੇਨਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਵਮ ਤੇਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪਦ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਮ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਇਦਮ ਗੁਣ ਕਿਰਿਆ ਜਾਤੀ ਦ੍ਰਵ ਸੰਬੰਧ ਵਸਤੂ ਸ਼ੂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆਤੇ ਨੇ ਇਦਮ ਗੁਣ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ ਉਸ ਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨੀ ਕਿਰਿਆ ਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਕੈਸੇ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਈ ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਸੇ ਬਈ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਚ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਛਿੰਨ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੱਤਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਪਕ ਵਸਤੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਨੀ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਰਿਆ ਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੋ ਤਰਫ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਸਰਵਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਰਵਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਮਰੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂ ਪਈਆਂ ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੂੰਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਹੋਵਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਹਿਲ ਜਿੱਡਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਵੱਤਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਰਵਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਵੱਤਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਪਰੀ ਮੈਨੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਇਹ ਉਪਸਰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਪਸਰਗ ਇੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਾ ਅਪ ਸਮ ਅਨੁ ਅਵ ਨਿਸ ਨਿਰ ਦੁਸ ਦੁਰ ਵੀ ਅੰਗ ਨੀ ਅਧੀ ਅਪੀ ਉਤ ਸੂ ਅਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੀ ਇਹ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੀ ਉਪਸਰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰੀ ਪਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਾ ਪਰੀ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਦਾ ਪਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਾਰੋਂ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਸੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਫ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦਮ ਗੁਣ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਗਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਜਾਊ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਊ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ गुण क्रिया और आगे की है जाति द्रव्य और संबंध भी ओदा कोई नहीं है किसी नाल नहीं ओदा संबंध किसी नाल नहीं है शरीर का संबंध है ये मेरा पुत्र है सूक्ष्म शरीर का भी संबंध नहीं है आत्मा का कितों हो जाएगा वस्तुषु समम तेना स्वरूपस्य सर्वम एतद् ईशितम् इदम पूर्वक श्लोक में देखो इदम जड़ा क्या है ना इदम ये इदम पूर्वक श्लोक में कहे गए अनवस्था आदि का सब ही दोष गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु ये आत्मा नु कैसा मनांगे गुण क्रिया जाति द्रव्य और संबंध इन पांच वस्तुओं में समम समान ही है ये जगह दोष है ना ये पंच वस्तुओं से है ये समझ लो हुण
ठीक है
ये जड़े दोष पिछे दस के आए हैं वो किन्ना दे विच आउणगे आज एक चीज होगी जेदा गुण होएगा जेदी जाति होगी जेदे च क्रिया होगी जेड़ा द्रव्य होगा और जेदा किसी नाल संबंध होगा पदार्थ तो ओदे विच की आऊगा जैसे न्याय न्याय वाले ने नौ द्रव्य मन्ने हैं न्याय शास्त्र ने नौ द्रव्य मन्ने हैं वो फिर तुम कि बाद फिर थोड़ा विस्तार हो जाएगा ना क्योंकि साडा विषय नहीं है ना तो मैं तो तुम दसदा तुम द्रव्य प्रश्न किया है ना मैं इस वास्ते थोड़ा दस दिता नहीं पदार्थ अलग चीज है पदार्थ सत मन्ने उन्होंने न्याय वाले ने पदार्थ सत मन्ने द्रव्य नौ मन्ने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंज ते हो गए ठीक है और मन और आत्मा और दिग ऐसे करके नौ द्रव्य मन्ने उन्होंने ठीक है हाँ जी वो द्रव्य अलग चीज है ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਦਰਬ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਜਿਹ ਚ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੋਊਗੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਤੀ ਦਰਬ ਔਰ ਸੰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਦੱਸੇ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੂਰਵਕਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਵਿਕਲਪ ਅਸੰਗ ਦੇਖੋ ਵਿਕਲਪ ਅਸੰਗ ਹੋਣੇ ਸੇ ਵਿਕਲਪ ਮਨੇ ਅਸੰਗ असंग होने से एतद सर्वम स्वरूपम जह गुण आदि सब वस्तु स्वरूप में ही विकल्प है इति है कल्पित है स्वरूप में मैंने ना आत्मा में कल्पित है इति ईशितम ऐसा जान लेना चाहिए अंदा ऐसा समझ लो ये जेड़े गुण है जेड़ी जाति है ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਵ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿਰਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕਲਪਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਚ ਬਸ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਈ ਦਾ ਨਾਮ ਥੋੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਥਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਕੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਹੈ ਜਹਾਂ ਵੀ ਗੁਣ ਕਿਆ ਨਿਰਗੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ जहाँ भी गुण क्या निर्गुण जहाँ गुण हो जहाँ निर्गुण हो गुण निर्गुण में जहाँ गुणवान में देखो हम ठीक से समझ लेना क्रिया भी क्रिया रहित में है जहाँ क्रियावान में आंदा गुण गुणवान में है कि जहाँ गुण से रहित जेड़ा निर्गुण है वो दे विच है की दसोगे गुण केदे विच है गुणवान में जहाँ निर्गुण में जे निर्गुण में गुण कहता और निर्गुण कैसे होया फिर तो जे गुणवान में गुण कह रहे तो वो तो पहले ही पता है उच्च है ही है फिर की कह रहे हैं क्रिया जो है क्रिया भी क्रिया रहित में है या क्रियावान में जी क्रिया है वो केदे विच है क्रिया जो रहित है जो निष्क्रिया ओदे विच क्रिया है उच्च तो हो नहीं सकती तो जे फिर केदे विच कहो क्रियावान वो फिर की दसन की लोड़ है वो सारे ने पता इत्यादि विकल्प करके पूछने पर प्रथम पक्ष में व्याघात और द्वितीय पक्ष में आत्माश्रय दोष पूर्ववत समझना चाहिए। ठीक है, ब्रह्म अतिरिक्त अन्य वस्तु में पूर्वोक्त वार्ता ठीक है। देख लो, ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरा नहीं है दो चार उल्टे सीधे भी दस दांगे। ये फिर किच हो ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तुआं से मतलब किथे आ गया फिर परपंच च। तो जेड़ा ब्रह्म है आत्मा है वो प्रपंच से अलग है, उसका संबंध ही नहीं है। किंतु प्रकृत ब्रह्म के विचार का फल क्या निकला, ऐसी शंका का उत्तर अगले श्लोक में कहते हैं। अंदर फिर ब्रह्म विचार का फल की निकलिया है, ब्रह्म जेड़ा विचार असी कर रहे हैं उसका फल की निकलिया। विकल्प तद भावाभ्यास भ्याम संप्रिष्ट आत्म वस्तुनि विकल्पत्व लक्षत्व संबंधाद्या तु विकल्पतः। विकल्प तद तद भावाभ्याम विकल्प और विकल्प ठीक है, विकल्प और विकल्प अभाव, विकल्प और विकल्प का अभाव मैंने ना होना जहां इदा समझ लो विकल्प और निर्विकल्प बस दोनों में असंस्पृष्ट मैंने संबंध वाला आत्म वस्तु नहीं, संबंध रहित परमात्मा वस्तु में देख लो संबंध रहित केड़ा हो गया वस्तु अर्थ की है परमात्मा वस्तु। निर्विकल्पत्व लक्षत्व संबंधाद्या तू विकल्प विकल्पत्व धर्म और लक्षत्व धर्म संयोग आदि संबंध तथा द्रव्य गुण क्रिया और जाति सब ही कल्पिता कल्पित है। आंदे जितने तुही दसे केड़े केड़े जितने तुही दसे केड़े देखो द्रव्य गुण क्रिया जाति अंदर साब जेड़े है ना एक कल्पित है किदे विच आत्मा च, इन्हां दा आत्मा दे नाल संबंध नहीं है, कल्पना कर ली है। कल्पना किनू कहिंदे आ, मन ला तेरे को 50,000 रुपया है तू 10,000 इन्हू देता बाकी तेरे को किन्ने बचा इदे की मन्ने आप है तो नहीं ना उन्हू दिता तो की कहता ना उन्हू 10,000 दिता कल्पना ही कर ली मन लिया बस मान ला तेरे को 50,000 रुपया तू 10 उन्हू दे दे बाकी तेरे को किन्ना बचा ना 50,000 है ना 10,000 उन्हू दिता तो की कीता कल्पना ही कर ली बस यही संसार दी अपना कल्पना ही कर ली। असली कल्पना आपां केड़ी कर ली है मैं जीव हूं, असली कल्पना आपां ये कर ली है मैं जीव हूं ना जी। जीव जेड़ा है वो तो परमात्मा का सिमरन करके फिर परमात्मा नूं जाके मिलेगा किसे बैकुंठ विच, इन्ना सफर किदां करूगा जी। जहां ते परमात्मा नूं सर्वत्र अंगी अंग संग मनो भाई बैकुंठ च मनोगे तो फिर गम गड़बड़ है उतों आउंदियां भी देर लगेगी फिर हाँ उन्हूं सदा अपने अंग संग समझोगे ता ही तो साड़ी सहायता करूगा तेनी सहायता किदां करूगा। हाँ भी देख ले उन्हें क्या है आजाद द्वारका वासी ते जदों भगवान आए तो उन्हें पूछा इन्नी देर क्यों करती आंधी तू ते तू ही ते क्या सी द्वारका वासी ते द्वारका तो उन्दा टाइम ते लगना सी तू कहने घट घट वासी ते मैं इत्थों प्रगट हो जांदा देख लो साडी भावना है जैसे जैसे असी भावना करांगे भगवान ऐसा ही हो जाएगा। जै भगवान का कोई ना रंग है ना का रूप है ना जाति है ना गुण है आत्मा का नहीं है तो वह कितों हो जूगा वह भी तो आत्मा भगवान ही है आत्मा भी बस सगल बनस्पत में बस्त है सगल दूध में दसो सकल बनस्पति जिन्नी बनस्पति है वो सारी दे विच रचया मिचया पिया है। राम नु क्यों कहिंदे? रमाए हुए नु राम कहिंदे। वासुदेव क्यों कहिंदे? सर्वत्र वसे हुए नु की कहिंदे? वासुदेव। ते जे सर्वत्र वस्या है ते फिर प्रगट नहीं होएगा, ते इहदा मतलब की होया? वो साडे अंग संग नहीं है, अंग संग ते भी दूर समझ लिया, साडे रोम रोम विच है। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਫੜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਧੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਧੱਸ ਗਿਆ? ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਧੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਮ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ? ਛੇਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਗਲੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਸੀਨਾ। ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਛਾਨਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੈਸਾ ਹੋਇਆ? ਜੈਸੇ ਆਟੇ ਛਾਨਣ ਵਾਲੀ ਛਾਨਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਘਮੰਡ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਇੱਕ ਘੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ, ਤੂੰ ਘੜਾ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਖੜੇਗਾ? ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਆ ਤੂੰ ਨਾ ਭਰਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਘੜਾ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਲੈ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ? ਇਹ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਉਹ 'ਚ ਸਗੋਂ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਦਬੂ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਦਬੂ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ, ਮਾਰੋ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰੂਪ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹੀ ਪਾਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਹੈਂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਘੱਟ ਮੈਨੇ ਸਰੀਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਮਰਾ ਧੋਤਾ, ਚੰਦੋਗੇ ਲਾਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ, ਆ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲ ਗਏ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਕੁੰਡੀ ਲਾਤੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਆਪ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਗਏ, ਤੇ ਕਿਆ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਉਂਦੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ, ਅਸਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ, ਉਹ ਭਲੇ ਪ੍ਰਰਬ ਦੇ ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਰਬ ਦੇ ਬਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਜੇ ਉਸ ਜਨਮ 'ਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਾ ਜਨਮ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਫਿਰ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲੇਗਾ ਜੀ? ਪੂਰਵ ਉਕਤ ਇਤਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਗ ਸੇ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਐਸੀ ਅਸ਼ੰਕਾ ਹੋਣੇ ਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਫਲਿਤ ਅਰਥ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਇਸਮੇ ਛਾਪਾ ਛੁੱਡਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਪਰ ਮੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਫਲਿਤ ਅਰਥ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਅਬ ਫਲਿਤ ਅਰਥ ਮੈਨੇ ਨਿਚੋੜ, ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥਮ ਵਾਕੇ ਤਦਰਥ ਤੂਨੂੰ ਸੰਘਾਨਮ ਸਰਵਣਮ ਭਵੇਤ ਯੁਕਤਿਆ ਸੰਭਵਾ ਵਿਤਤਵਾਨੁਸੰਧਾਨਮ ਮਨਨਮ ਤੂੰ ਤਤਨੁਸੰਧਾਨਮ ਮਨਨਮ ਤੂੰ ਤਤਨੁਸੰਧਾਨਮ। ਦੇਖ ਲਓ ਤਤ ਕਾ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਮੈਨੇ खोज ग्रंथ जेड़ा पढ़ के आए पिछे तुसी केड़ा वो जेड़ा आपां उत्थे रोटी बस्ता में जेड़ा पूर्णा होती कीती आ वो ग्रंथ केड़ा सी तत्तन संधान उहदा नाम सी तत्तन संधान ते तत्तन संधान क्यों कहिंदे आ तत्तन संधान दा अर्थ की होया तत् माने आत्मा अपने जेड़ा आत्मा है अपना जेड़ा आप है अपना जेड़ा आपा है उहदी खोज करनी उनू पहचानना जैसे समर्जी है मिला वो तो तुम ज्यादा पढ़िया इत्थम वाक्य चालवी श्लोक से लेकर देखो चालवी श्लोक से लेकर की कह रहे हैं चवालीस पूर्व उक्त प्रकार से तत्व आदि तत्वमसी आदि महावाक्य के द्वारा तत्वमसी आदि महावाक्य आदि तो बाकी की ले लेना बाकी जेड़े तीन बच गए तद तदर्थ अनुसंधानम उस वाक्यों के अर्थ जीव ब्रह्म की एकता उस वाक्य का अर्थ की है
जीव ब्रह्म की एकता
हाँ भी जीव और ब्रह्म ये दोनों एक है ये अलग अलग नहीं है ये जीव जेड़ा है ये कैसा है ब्रह्म स्वरूप आप की करी बैठे हैं उन्हें तो भूल गए अपने आप में जीव बन के बैठ गए यही बंधन का कारण है का विचार अर्थात विचार पूर्वक निश्चय सर्वण भवेत उनू की कहते हैं सर्वण कहते हैं सर्वण किनू कहते हैं सुनू नहीं कहते सुनू तो आप बहुत कुछ सुन रहे फिर सारा दिन सुनते रहते किनू
अपने
हां अपने स्वरूप यह निश्चय कर लेना कि मैं जीव नहीं हूं कन दे नाल इस वाक्य का जो संबंध हो गया ओनू सरवण कहांगे जे कन दे नाल संबंध ही नहीं होया तो बोलदा रहे जो मर्जी बोलदा रहे हुण आ कथा चल रही है ये साडे कन च नहीं पै रही पै तो रही है संबंध भी हो रहा पर साडा ध्यान नहीं है
तो
की पता लगू की कह रहे कोई पुछया बाद च कथा सुनी की कहांगे नहीं हुण तुसी ओ छड्डो तुसी इत्थे बैठे जे सुन रहे जे आपां बोल भी रहे हां तुसी बैठे भी जे थोड़ा जा भी ताड़ा मन कि इधर चला गया तो फिर जो मैं बोल रहा हूं पकड़ नहीं आएगा की बोल तो फिर असली सरवण का अर्थ की होया मन दे द्वारा सुनना भाइयों के कहते हैं ना बाणी पढ़ो तो कैसे पढ़ो ओनू सुनो भी मैं की बोल रहा है सुनोगे तो जितना मर्जी रौला पैंदा रहे तुहानू पता ही नहीं लगेगा कि रौला पैन दिया देख लेना परख के अज अनुभव करके देख लेना अज अनुभव करके देख लेना स्पीकर चल रहा है तुसी बाणी पढ़ रहे हो जेड़ी भी अगर ओ श्लोकां दे विच अर्थ दे विच तुहाडा ध्यान है किन्नी आवाज आउंदी रहेगी तुहानू पता ही नहीं लगेगा की बोल रहे हो इनू कहिंदे सरवण ठीक है सरवण भवेत सरवण कहा जाता है युक्ति युक्तिया और युक्तियों से तीसरे श्लोक से लेकर 43वें श्लोक तक कही हुई युक्ति से देख लो संभवती तत्वानुसंधानम श्रुति में सुना गया अर्थ देखो श्रुति से में सुना गया अर्थ एकत्व केड़ा अर्थ एकत्व बन सकता है इस प्रकार का जो ज्ञान है तत्तु मननम वह तो मनन कहा जाता है इनू कहते मनन सर्वण मनन सुनिए मनिए किनू कहते सुनिए इनू कहते सुनिए ते मनिए मनिए किनू कहते सुनिए मनिए मन कीता भाव अब आ अर्थ लगन गे उहदे इनू कहते सर्वण इनू कहते मनन ना दसो जपजी साहब अर्थ कि लगाएगा जरा वेदांत ही नहीं पढ़िया सुनिए मनिए मन किता पो जपजी साहब जी है ना तो कि लगावे अर्थ जो सानू सरवण का ही नहीं पता मनन का ही नहीं पता तो मनन किनू कहते वह मनन कहा जाता है निर्ध्यासन का स्वरूप कहते हैं अब निर्ध्यासन सुनिए मनिए मन किता भाव मन कीता भाव मन निर्ध्यासन। अब ओदा अर्थ सुनो केदा मन कीता भाव सुनिए एदा अर्थ हो गया मनिए ए दो हो गए आ मन कीता भाव
तीजे तो लेके 43 तो श्लोक तक ता कहदा सुन ले
हां
फिर मनन दा
हुन तानू निर्ध्यासन दा दस दे जे किथों तक नहीं सुन लिया ठीक है। ताभ्याम निर्विकल्प ताभ्याम निर्विचित्ते अर्थे चेतसः स्थापितस्य यत् देख लो एता एतानात्व मेतद्धि निर्यासन न मुच्यते नाम उच्चते ऐसे हो जाएगा ऊ जेड़ा है ना
उधर लग
जाए इधर है जो उच्चते हो जाएगा
नाम उच्चते
हाँ नाम उच्चते अध्यासनम उच्चते ताभ्याम निर उत्ते इधर रेफ है अद्दा रारा निर
मैरिज पाई हुई जी
हाँ जी
एका मरा जाएगा
निर्विचिकित्से ठीक है फिर बनेगा निर्विचिकित्से सर्वण और मनन के द्वारा देख लो की कह रहे हैं सर्वण और मनन के द्वारा सर्वण भी कर लिया फिर उदे नाल मनन भी कीता संयम रहित संशय रहित फिर संशय कोई नहीं संशय मैंने शक नहीं रह गया कि जेडी मैं गल सुनी सी ओहो ही मैं मनन कर रहा ऐसा जो पक्का विश्वास हो गया संशय कोई नहीं रहा संशय रहित अर्थ में स्थापितस्य चेतः चित्त दी स्थापना चित्त नु स्थापन कर दिता चित्त नु ठहरा लिया स्थापन किए हुए लगाए हुए स्थापन माने लगाए हुए चित्त का यत एकतानत्वम एकाकार वृत्ति प्रवाह है उसी को निर्ध्यासनम उच्चते उन्नू की कहते हैं उसी नु निर्ध्यासन कहते हैं।
पाप वृत्ति फिर उधर जुड़ गए पक्की मतलब कहने दा भी दृढ़ निश्चय
पहला सानू पहला ता ही ते सरवण दा फायदा ता ते मनन दा फायदा ते सीधा उन्होंने कहता फिर सीधा ही तुसी निर्ध्यासन में चले जाओ निर्ध्यासन केदा करोगे पता ही नहीं है पहला सरवण करो फिर करो मनन सुनिए मनिए फिर निर्ध्यासन की गल दसी
उन्होंने मतलब ये सुन लिया भी जीव और ब्रह्म एक ने
हां
ये सुन लिया जी
हां
फिर ओदे ते कितू परंतु ना रहे
बस शंका ना कोई राजे एक किदा हो सकदे है एक किदा हो सकदे है
ए संशय खत्म हो जे बिच
संशय रहित मनन
ओ मनन हो गया
हां फिर निध्यासन बस ओ जेड़ा मनन कर लिया ओदे नाल ही मन दी वृत्ति जुड़ी रहे
मैं मतलब
ब्रह्म हूं जदों एदे नाल वृत्ति जुड़ी रही उनू की कहांगे निध्यासन और जदों एदी पूरी पक्क अवस्था होगी ओही समाधि है समाधि को अलग चीज नहीं है ये है ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੱਸ ਕੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦੱਸ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਧਿਆਸਨ ਦਾ ਸਰਵਣ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸੁਣੀਏ ਮੰਨੀਏ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਅੰਤਰਗਤ ਦੇਖੋ ਆਗੇ ਕੀ ਹੈ ਪੰਕਤੀ ਅੰਤਰਗਤ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਮਲ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਲ ਕੇ ਦੋ ਅਰਥ ਲੱਗਣਗੇ ਮਲ ਮੈਨੇ ਪਾਪ ਰੂਪੀ ਮਲ ਤਾਂ ਛੁੱਟੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ
ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮਤਲਬ ਮੇੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਘਮਾਓ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ
ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਵਿਦਾਂਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰਥ ਲੱਗਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਾਂਤ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ सारे काम समाप्त हो गए जेड़ा अंदर वाला तीर्थ ना रहा ना जिन्हें ओनू बाहर जान की लोड़ नहीं फिर
हां
آپ کیا بھی ہے نہ ہوندا پھرے تیرساں تے اندروں میل نہ جاوے اندر دی جڑی میل آ او کدھوں جاؤ گی اندر ہی جڑا تیرتھ آ او تے چھکان کرنا نہ ہوندا پھرے تیرساں تیرے اندروں میل نہ جاوے اندر دی جڑی میل ہے او باہر لے او باہر لے تیرتھ نندا نہیں انہاں دی باہر لے تیرساں دا بھی پھل ہے ہے پھل انتاکن شدھ ہوئے گا پر جڑا اندر جڑا اشنان ہے جیسے آپ ٹوٹی دے کو گندے ہو گئے ہیں بڑا شریر کالک لگ گئی کالا کلا ہو گیا سابن دے نال گرم پانی کر کے نہا لیا تو کیسے ہو گئے شدھ ہو گئے ٹھیک ہے ایسے ہی جدا ساڈا من کالا ہو گیا وہ دے واسطے بھی سابن ہے نا وہ جڑا اندر والا تیرتھ ہے وہ دے وچ نام روپی سابن لگا کے نہ ہو گئے تو کوئی کالک فالک کچھ نہیں رہے گی صاحب شدھ ہو جاؤ گے گنگا جدو بھیجا سی برہما جی نے تو پرتھوی تے چلے جا جدو بھاگیرتھی نے تپسیا کیتی تو پہلا تو تپسیا کیتی تو کہندے بھی چل ٹھیک ہے برہما جی دی میں گنگا چھڈ دینا پر اینوں روکن والا ہے ایدا ویگ کوئی روک نہیں سکتا بھگوان شنکر تو بغیر نہیں تو یہ تو فوڑ کے پرتھوی نوں پتال چل جائے گی تیرا کام تو ادھورا ہی رہ گیا تو پھر وہ برہما جی کی تپسیا کی بھگوان شنکر کی تو بھگوان شنکر نے کہا ٹھیک ہے جا تو برہما جی نے گن چھڈ دے بھگوان شنکر نے جٹا کھلار لیا انہوں نے کمنڈل تو چڈی وہ جٹا سی الجھ گئی انہوں ویگ سی میرے سامنے آئے گا جو میں بہا کے لے جاؤں گی گھمنڈ سی بھگوان شنکر کی جٹا چ الجھ گئی تو پھر بھاگیرتھ نے پرنام کر کے بےنتی کی بھگوان میرے پوروجوں کا آدھار تو ہوا ہی نہیں تو اتھی رہ گیا کام پھر دو جٹا چڈیا دو جٹا کا جل آ رہا گنگا نے پھر پرارتھنا کی برہما جی کے سامنے کہ میرے وچ تے پاپی لوگ آ کے نہاؤ گے تو میں انہوں نے دوشت کر دیں گے تو میں تو نہیں جانا انہیں کہنا جا پتری کوئی گل نہیں کوئی مہاتما بھی نہائے گا تو تیرے سارے جڑے انہوں نے پاپ چڈے نا وہ تینوں پن بھی مل جان گے برابر رہیں گے پچوجا سلوک میں اچھا ادھر آ گئے پچوجا
اچھا
ندھیاسن جدی پرپک اوستا ہو جائے گی اون کہ سمادھی ہوں کل سمادھی کا پرسنگ چلے گا
سار پاپ نکل گیا سارا